हम तो कई बार इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं कि हमने देखा है लोगों को कहते हुए सुना है कि बेटा तो हुआ लेकिन थोड़ा कम वजन का है, बाजू वालों के यहां हुआ था उसका वजन तो ज्यादा। अब बता उस छोटे से बेटे को आपने कंपटीशन में डाल दिया बचपन से, उसके माध्यम से आप अपना सुख दुख निर्धारित कर रहे हैं। यहां से हमारी प्रतिस्पर्धा की भावना हमें दुख देना शुरू करती है। हमारे बच्चे का हृष्ट पुष्ट और वजनदार होना, उसका अच्छा होना, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन औरों की अपेक्षा कुछ अधिक होना दुखदाई सिर्फ इतना ही। मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो जिसमें मैं बैठ करके सफर करूं, मेरे पास बहुत अच्छा घर हो जिसमें मैं रहूं शांति से, मेरा परिवार बहुत स्वस्थ और प्रसन्नता से जीवन जिए, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो पड़ोसी वाले से मेरा घर थोड़ा ऊंचा हो और उसके गाड़ी के मॉडल से मेरा ज्यादा लेटेस्ट हो और उसके परिवार से ज्यादा सुखी मेरा परिवार हो, ये चीज मुझे दुख में ले जाती है, समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि सुख इसी में, और अनुभव में ये आता है कि इससे तो उल्टा ही मेरे जीवन में मैं दुख अपने हाथ से निर्मित कर लेता। मुझे जो प्राप्त है मैं उसे क्यों ना देखूं, जो औरों को प्राप्त है उसे देख देख कर मैं व्यर्थ में अपने जीवन को दुखी गाय को बनू। जो मुझे प्राप्त है वो मैं देखूं तो मुझे आनंद आएगा, जो दूसरों को प्राप्त है उसे देखकर आनंदित होना चाहूं तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन होता तो मेरे साथ उल्टा ही है कि मैं अपने जीवन की उपलब्धियों को तो देख करके जितना सुख नहीं पाता हूं, उतना दूसरे के जीवन की उपलब्धियां देख करके अपने लिए दुख निर्मित कर लेता हूं। ये मेरी जो आदत है वो मुझे परिवर्तित करनी चाहिए। अपने सुख में सुखी होना बहुत अच्छी चीज है और दूसरे के सुख में सुखी होना और बहुत अच्छी चीज है। अपने दुख में दुखी होना ये तो सबके लिए सामान्य है, लेकिन दूसरे के दुख में दुखी होना बहुत विरले लोगों का काम। वास्तव में ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए। सुख दुख तो यहां कमी बेशी सबके जिम्मे आए हैं, लेकिन दूसरे के सुख में हम सुखी हो ले वे तो हमारा सुख दूना हो जाता है, और अपना दुख बांट ले वे और दूसरे का दुख बांट ले वे तो दोनों का आधा आधा रह जाता है। विनोबा से जब पूछते थे कि सुख दुख का गणित तो बताओ, तो कहते ये संसार के गणित से अलग है सुख दुख का गणित, यहां तो सुख बांटो तो अपना दूना हो जाता है और दुख बांटो तो अपना आधा रह जाता है। हम अगर इस तरह अपने जीवन में प्रतिस्पर्धा की भावना छोड़कर जो प्राप्त है उसमें सुखी और संतुष्ट होने का कोई उपाय कोई दृष्टि प्राप्त कर ले में और अपने दुख को निर्मित करने का उपाय छोड़ दे में, तो हमसे ज्यादा और कोई सुखी नहीं होगा, हमसे अच्छा और किसी का जीवन नहीं होगा। दूसरी चीज और थोड़ा सा अपन देखें कि कैसे हम और दुख निर्मित कर लेते हैं। जो हमारे पास है उसमें हमें सुख नहीं मालूम पड़ता, ये तो ठीक है, लेकिन उसमें सुख मुझे तब मालूम पड़ता है जब उसे कोई देखे और कहे कि इनके पास तो इतनी चीज है, तो मुझे अपने पास होने वाली चीजों में सुख नजर आने लगता। वैसे मेरे पास कितनी सारी भी चीजें हों लेकिन मुझे उनमें सुख नहीं मालूम पड़ता। मुझे सुख तो तब मालूम पड़ता है जब कोई और उन चीजों को देखे और देख देख करके दुखी हो, हमें बड़ा सुख मालूम पड़ता है। हमने अगर नई कार खरीदी और रास्ते में उसको लेकर के निकले और किसी ने नहीं देखा और हमने कोशिश भी करी कि कोई देख लीवे, हम तो भरे चौराहे से निकले थे, बहुत तेज तेज आवाज करते निकले थे, लेकिन कोई ने ध्यान नहीं, सब व्यस्त थे। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब कोई हमसे कार की नए मॉडल कब लेकर के आए ये नहीं पूछता, तो हम ही कहते हैं कि आपको नहीं मालूम ये हमने नया मॉडल खरीदा। और वो अगर कह दे कि सो वाट, तो हम क्या करें, रखी रहो अपने पास। तो फिर ऐसा लगता है कि उस कार को ले जाके कहूं समुद्र में फेंक देते तो अच्छा है, का काम की। सभी चीजों के बारे में ऐसा ही है, हम जो प्राप्त है उसका आनंद ना लेकर के दूसरे को एग्जिबिट करने में आनंद लेते हैं, और अगर उसके प्रदर्शन में और कोई उसका प्रशंसा और सराहना नहीं करता है, मेरे अचीवमेंट्स मुझे सुख ना देते हैं, बल्कि जब कोई उन मेरे प्राप्त वस्तुओं या कि उपलब्धियों पर कोई जब प्रशंसा करता है तब मुझे थोड़ा सुख मिलता है। भैया, गुणवत्ता हमारी बढ़े उसमें ही आनंद होना चाहिए, दूसरा कोई जब हमारी गुणवत्ता की प्रशंसा करे इसके लिए इंतजार क्यों करना चाहिए। लेकिन क्या करें, हमें अपने अंदर प्राप्त होने वाली योग्यताएं और बाहर से प्राप्त होने वाली जो उपलब्धियां हैं उनका आनंद लेने की कोई समझ ही नहीं है। हमारा सारा आनंद तो उन वस्तुओं को दूसरे को दिखा करके और दूसरे को ईर्ष्या उत्पन्न करके और अपना जीवन व्यतीत करने की हो गई है। इस अपनी आदत को बदल लेना चाहिए, अगर लगे तो बदल लेना, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे ही, कोई अड़चन नहीं। अपन तो चर्चा कर रहे हैं, आपको हो सकता है कि उसी में अच्छा लग रहा हो, तुम्हें कौन होता हूं, मैं तो सिर्फ एक सलाह दे रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदर्शन करने से और हम ज्यादा दुखी हों और जो हमें प्राप्त है उसका हम आनंद ना ले पा रहे। एक अम्मा जी के जीवन की घटना है, सबने सुन रखी होगी। वो अम्मा जी पान खाने की बहुत शौकीन थी और वो पान जो है कपड़े में लपेट कर रखती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उनका बेटा लखनऊ में था, उसने अम्मा जी के पान के शौक की को देखते हुए पान रखने का एक बढ़िया सुंदर सा, लखनऊ में बढ़िया बढ़िया बनती है नफीस चीजें, तो वो पान रखने का मचला फैलाता हुआ, डिबिया पान रखने की सुंदर सी, वो लकड़ी से बनती है और बड़ी कलाकारी से बनती है, वो भेज दी। अब अम्मा जी ने उसमें पान रखे, लेकिन उसमें पान रखने का अभी आनंद आया नहीं। आई तो डिबिया बहुत सुंदर है, लेकिन किसी ने देखी मेरी डिबिया, जब तक कोई नहीं देखे कि मेरे पास इतनी सुंदर डिबिया है तब तक उसमें पान रखने का मुझे कोई आनंद ही नहीं। अब बुढ़िया क्या करे, लोगों के घर जाती बार बार और कोई कुछ कहे चाहे नहीं कहे, अपनी डिबिया निकाल करके उसमें से पान निकाल के खाती चार लोगों के सामने, लेकिन कोई ने नहीं पूछा कि अरे वाह इतनी सुंदर डिबिया, किसी ने नहीं पूछा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बुढ़िया ने दरवाजे खोल करके हल्ला मचाना शुरू किया, ए भैया दौड़ो दौड़ो, कोई आग लग गई घर में। हुआ ये था कि बुढ़िया ने खुद कागज बाजक कचरा वचरा कागज इकट्ठे करके अपने हाथ से लगाई थी और हल्ला भी मचा दिया कि अब दौड़ो कोई आग लग गई घर में। लोग दौड़े आए, पानी वानी लाए, बुझाना शुरू किया, पर इसके बावजूद भी बुढ़िया तो एक कोने में खड़ी धीरे से अपना डिब्बा निकाल के उसमें से पान खाने लगी। एक और बुझाने वाली कोई और बहू होएगी किसी की, उसने देख लिया कि अरे इतना सुंदर सा डिबिया पान रखने की, फौरन बुढ़ी अम्मा से कहा कि अम्मा जी इतनी सुंदर डिबिया आपने कहां से पाई। अरे कहने लगे कई पेड़ ने पूछ रही होती तो जागी काहे को लगती। अब वो भीतर लग गई ना इसलिए बाहर लगाना पड़ी, भीतर लगी हुई थी कि कोई ने तो नहीं पूछा इतनी सुंदर सी मेरे पास चीज है, कहीं ऐसे ही तो नहीं अपने जीवन में भी। हमने उदाहरण वो बुढ़िया का उदाहरण था, वो यहां वाली बुढ़िया थोड़ी और कहीं की, ऐसा अपन सोच लेते कि वो तो कोई और होगा, मेरे अंदर ऐसी चीजें थोड़ी है। लेकिन अपना भी स्वयं अपने को एनालिसिस करना चाहिए, अपने को जीवन में जब दुख आवे तो ऐसे ही कारण ढूंढना चाहिए कि कहीं ये भी तो एक कारण नहीं है कि मुझे जो प्राप्त है मैं दूसरे को दिखाने में सुख मान रहा हूं। अरे उसकी प्राप्ति में ही सुख है, कोई देखो तो ना देखो तो। और तीसरी चीज, मैं इस तरह से चीजों को दिखा दिखा कर अपने को बहुत ऊंचा और प्रतिष्ठित ऐसा मान लेता हूं, और फिर जब इन चीजों से मैं अपने को प्रतिष्ठित और बड़ा मान लेता हूं तब एक नई मुसीबत खड़ी कर लेता हूं अपने स्वयं के लिए, अपने दुख का स्वयं इंतजाम कर लेता हूं। अब अगर मेरे पास अच्छी अच्छी चीजें इकट्ठी हो गई हैं या मुझे कोई बहुत सम्मान मिल गया है तो फिर वो बना रहे, अब उसमें कमी ना आए, अब इस बात की चिंता खाई जाती है, स्टेटस का सवाल आ गया। अब मेरे बेटा नहीं था तो लगता था कि बेटा हो जाए, बेटा हो गया तब हम बेटे वाले कहलाने लगे, चार लोगों के बीच में और हम बेटे वाले हैं, इतने में भी काम नहीं, बेटा कौन सी स्कूल में भेजे अब पढ़ने लायक हो गया। सुनते हैं कि रामगंज मंडी से बाहर 10 किलोमीटर पर अंग्रेजी में एक पढ़ाने वाली स्कूल है, हम तो वहीं भेजेंगे, अच्छी बात है। अब उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा, मेरी गुंजाइश नहीं भी है आर्थिक रूप से फिर भी मुझे अगर मकान भी बेचना पड़े। एक व्यक्ति अपनी जमीन बेच करके कोटा में अपने बेटे को वंसल में कोचिंग करवा रहा IIT, और उससे आप मिलो तो ऐसे मिलता है वो जैसे कि उसका बेटा नवाब बन गया हो, साहब बन गया हो, अभी बंसल में कोचिंग ले रहा IIT की, लेकिन वो कहता ऐसे है कि मेरा बेटा IIT की कोचिंग ले रहा। अब बताओ, दुकान बिक जाए, मकान बिक जाए, जमीन बिक जाए, लेकिन सवाल इज्जत का है। मेरी इज्जत इसमें है कि मैं अपने बेटे को बड़ी स्कूल में पढ़ाऊं। अब इतने ही नहीं, मेरा बेटा बड़ी स्कूल में पढ़ करके पहले नंबर पे आवे। अब सभी व्यक्ति ऐसा सोचें तो बताइएगा उनको पहले नंबर में किस किस को, बहुत सारे लेना पड़ेंगे फिर पहले नंबर में, लेकिन आता तो एक ही है पहले नंबर। और मैं अपने हाथ से अपने दुख का इंतजाम कर लेता हूं। अब हर चीज में एक बार मैंने अपने आप को ऐसा मान लिया कि ऐसा और ऐसा हूं मैं, तो फिर पूरे जीवन में लोगों से वैसे ही पेश आता हूं, वैसे ही अपेक्षा रखने लगता हूं कि मैं इस पद पर हूं, मेरी ये प्रतिष्ठा है, मेरी ये इज्जत है। भैया, इज्जत चीजों के कमती और ज्यादा होने में नहीं है, इज्जत तो अपने जीवन में सुख शांति होने में, जो जितना सुखी है, जो जितना शांत है, जो जितना संतोषी है, वो ज्यादा ऊंचा है, उसका जीवन बहुत प्रतिष्ठित है, इज्जतवान है। ये चीजें आज इज्जत देती हैं, कल यही चीजें हमारी बेइज्जती करने में कारण बन जाती हैं, जो हम जोड़ जोड़ के रखें। करोड़पति आदमी का दिवाला निकल जावे तो कितनी बेइज्जती होती बताओ, करोड़ रुपया से इज्जत थी और वो करोड़ रुपया नहीं रहेगा सो बेइज्जती हो गई, जे जी करोड़ रुपया ने करोगा इज्जत दी कि बेइज्जती और दी बताइए। लेकिन ऐसा विचार आता नहीं अपने मन में, आता यही है कि जितनी ज्यादा मेरे पास ये चीजें होंगी उतनी मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। भाई, गुणवत्ता बढ़ाने से इज्जत बढ़ती है। चीजें और संसार के भौतिक सुख सुविधा के साधन बढ़ा देने से इज्जत नहीं बढ़ती। किसी बड़े स्कूल में पढ़ने से ज्ञान नहीं आता भैया, ज्ञान तो परिणामों की विशुद्धि और निर्मलता से आता है। लेकिन ये भी शिक्षा हम नहीं देते, अकेले बहुत अच्छे सुंदर से ड्रेस में जाने से स्कूल, अच्छे जूते पहन के जाने से स्कूल ज्ञान नहीं आता। वो तो ठीक है कि अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहन के जाएं, ठीक जो जो चीजें कहीं वो सब हम जुटाएं, लेकिन साथ में अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील रहें। ये बाहरी चीजें ही मेरे जीवन को समृद्ध नहीं बनाएंगी, मेरे जीवन को सुखी नहीं बनाएंगी। इतनी छोटी सी बात मुझे समझ में आई। मैं निषेध नहीं कर रहा इन बाहरी भौतिक सुख सुविधाओं की सामग्री का, लेकिन इन चीजों के पीछे मेरी चेतना समृद्ध ना होकर के पतित हो जावे तो भैया इस कीमत पर मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। इतना तो अपन अपने जीवन में निर्धारित कर ही सकते हैं। ये प्रतिस्पर्धा की भावना, ये प्रतिष्ठा की भावना, ये प्रदर्शन की भावना, ये हमारे जीवन को हम देखते हैं कि अंततः दुख में हम क्या करें। हमने अपने जीवन में संतोष रखना अगर सीख लिया, हमें जो प्राप्त है उसे देखना सीख लिया, तो ना कोई प्रतिस्पर्धा है, ना प्रदर्शन करने की भावना है, और ना मुझे किसी बाहरी प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। मैं अपने आप में प्रतिष्ठित हूं, मैं संतुष्ट हूं, यही तो अपने आप में प्रतिष्ठा है। मैं संतुष्ट हूं, देख ले कोई भी देख ले, कहीं से भी मुझे कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं। मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन से, तब फिर मुझे किसी और को पीछे छोड़ करके, किसी और की लाइन मिटा करके अपनी बड़े करने की इच्छा ही नहीं मेरे भीतर पैदा हो। बताइए, इतनी सी चीज मेरे जीवन को सुख दे सकती है और इतनी ही सी चीज का अभाव मेरे जीवन को दुखी किए हुए है। ये बात मुझे समझ में आ गई, जिस दिन भी समझ में आ गया। एक व्यक्ति था, गरीब था, किसानी करता था, बड़ा संतुष्ट था और आनंदित भी था, किसी बात की चिंता नहीं। बीज बो दिया, इंतजार है पानी बरसेगा, किससे कहने जाएंगे, किसी से नहीं, पानी का इंतजार करेंगे, अपना कर्तव्य करेंगे, और थोड़ा जितना आता था अपने खाने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए, और थोड़ा सा आगे के लिए बीज के लिए पर्याप्त है, जीवन आनंदित था। एक दिन उस रास्ते से एक व्यक्ति निकला, उसने कहा, तुमने आज तक दाल चावल गेहूं ये सब देखी? हाँ देखी। तुमने कभी हीरा देखा? उसने कहा, ये क्या चीज होती? अरे, उसने फौरन अपनी अंगूठी में जितना हीरा था वो दिखाया, ये हीरा। तो कहते, इसका क्या मतलब? इसका अगर ये तुम्हारे पास हो तो ये जो तुम्हारा खेत है, ऐसे ऐसे कई खेत तुम्हारे हो सकते, इतने से अकेले से। अच्छा, इतने अकेले, इतने छोटे से भी, इतने कंकर के जितने से, मेरा जितना खेत उससे कई गुने खेत हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। और अगर इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो, तब तो तुम पूरा गांव खरीद सकते, गांव। अच्छी बात। और उससे भी बड़ा हो, फिर तो क्या कहना, पूरा साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा। अब व्यक्ति तो चला गया अपना हीरा अपनी अंगूठी लेकर के, लेकिन इसके भीतर, अपन सबके भीतर भी ऐसा ही है, उसके भीतर का है, वो बेचारा गरीब आदमी। अब रात भर उसका कैलकुलेशन चलता, इतना छोटा, ढेर सारे खेत, थोड़ा और बड़ा मिल जाए तो गांव, और मुट्ठी भर वाला मिल जाए हीरा, तब तो फिर मेरी मुट्ठी में पूरा साम्राज्य। अब गुणा भाग लगा के उसने कहा कि हीरा खोजने में कितना पैसा लगेगा, हिसाब भी लगा लिया, इस खेत को बेच दिया जाए और हीरे की खोज में निकला जाए तो ज्यादा फायदा है। जो प्राप्त है उसमें आनंद नहीं है, जो प्राप्त है उसकी खोज में निकल रहा है वो, इस सबको दांव पे लगा करके। हम भी तो यही कर रहे हैं, मनुष्य जीवन कितनी मेहनत से पाया होगा उसको दांव पे लगा करके, और पता नहीं कौन सी चीज इकट्ठी करना चाहे। अपनी गैर बुद्धिमानी पर कभी भी ये मन को नहीं ध्यान आता है, दूसरे की गैर बुद्धिमानी पर आता है कि कितना बुद्धू है, खेत में अच्छी कमाई कर रहा था, काय को बेकार में हीरे की खोज में निकला है ना। अब वो तो निकल गया, लेकिन निकल गया देश विदेश जहां जहां हो सकता था सब में, और खोज में कि उतना बड़ा हीरा मिल जाए मुझे। लेकिन आर्थिक तंगी बढ़ती चली गई और इतना संक्लेश हुआ कि एक दिन उसने अपने प्राण ही दे दिए। लेकिन जिसे वो अपना खेत बेच के गया था, उस खेत में काम करते करते एक दिन उसी खेत के बाजू से निकले हुए जस्ट लगे हुए नाले में जब बारिश में पानी बहुत आ गया, तो अपने ऊंट को पानी पिलाने के लिए वो जो जिसका खेत था जिसने खरीद लिया था वो गया वहां, तो उसको एक चमकदार इतना सा पत्थर दिखा, उसने उठा करके अपने घर में लाके रख लिया। वही व्यक्ति जिसने उस किसान से कहा था कि इतने बड़ा हीरा हो जाए तो साम्राज्य तुम्हारा, फिर वहां से निकला, और वो तो यही समझा कि वही व्यक्ति है, जबकि वो तो खेत बेच के चला गया था। आया उसने, जैसे ही बैठक में घुसा तो हीरा इतना बड़ा झोरी था, वो तो पारखी था, उसने कहा अरे वाह क्या तुम्हें हीरा मिल गया। तू कहता किसकी बात कर रहा है, अरे मैंने एक व्यक्ति को हीरे की चर्चा की थी, वो तो मुझे खेत बेच के चला गया। तो तुम कोई और हो, कहते हां। ये हीरा कहां से पाया, बोले यही बाजू में, ऐसे तो बहुत सारे पड़े हुए हैं नाले में, मैं ऊंट को पानी पिलाना चाहता हूं ढेर, मैं तो एक उठा के ले आया था कि अच्छा लग रहा है बैठक में रख लेंगे। जब उस जोहरी ने आसपास खोजबीन की तो पूरे खेत में थोड़ी ही गहराई पर हीरे ही हीरे की खदान थी, जिसे कि वो बेच करके चला गया था। ऐसी हमारे साथ यहां भीतर में सुख की खदान की खदान पड़ी हुई है, कहां ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते दुख का इंतजाम कर रहे हैं। ये छोटी सी चीज अपने जीवन में अपन को समझ में आ जावे तो ये भौतिक सुख सुविधाएं हमारे जीवन को फिर दुखी नहीं कर पाएंगे। अभी ये हमें जितना थोड़ा सा सुख देती उससे कई गुना दुख देती हैं। अब ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ये मुझे दुख तो रत्ती भर ना देवे, मैं इनका सदुपयोग भर करूं, और इनका सदुपयोग करके अपने उस आत्म सुख को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूं, जो कि किसी पर निर्भर नहीं है, जो पराधीन नहीं है, जो स्वाधीन है, जिसमें मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। आत्मनिर्भरता मेरे जीवन में आती चली जाए, संतोष मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए, तो मेरे जीवन को सुख और शांति वहीं के वहीं उपलब्ध हो जाएगी। इसी भावना के साथ कि हम सब लोग अपने जीवन में जो दुख के इंतजाम हमने कर रखे हैं उनको छोड़ें और अपने जीवन को सुखी और अच्छा बनाएं, इसी भावना के साथ आज अपन नमोकार करते हैं कि हमारा जीवन हम ठीक ठीक ढंग से जी करके और अच्छा बना सकें। Oh.
ये हमारे भीतर एक विश्वास अगर पैदा हो गया है तो हमें एक प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए जिससे कि हमारे भीतर की अनंत संभावनाएं व्यक्त हो सके। हम जिंदगी भर कहां दूसरे से हाथ फैलाते और अपने जीवन के अच्छे बनाने की प्रक्रिया मांगते रहेंगे, हम तो अपने भीतर स्वयं ही उसको जागृत कर लेवे। जीवन भर भिखारी बने रहने से अच्छा है कि एक बार अपने भीतर की संभावनाओं को प्रकट करके और हम सम्राट की हैसियत से जो कि हमारा अपना स्वभाव है वैसा जीने की कोशिश करें। एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो है वो रास्ते के किनारे बहुत गरीब और भीख मांगता रहता, लोग दया करके उसको कुछ ना कुछ दे दिया करते थे और पूरी जिंदगी उसकी भीख मांगते गुजर गई। और एक दिन वो नहीं रहा तो लोगों ने और 10-25 लोगों ने उसकी लाश को जैसे तैसे करके दाह संस्कार किया और फिर वो जगह उसके निरंतर वहां रहने से और थोड़ी खराब हो गई थी तो सोचा कि उसको हटा दें, थोड़ा सा सफाई कर दें। तो सफाई करने के दौरान और कोई चीज उन्हें लगा कि जमीन के भीतर है और उन्होंने उसे निकाला तो सोने के सरपियों से भरा हुआ एक घड़ा था जिस पर बैठ करके वो जिंदगी भर भीख मांगता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो? वो तो एक उदाहरण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भीतर भी ऐसी ही शक्ति विद्यमान हो और हम दूसरे के सामने भीख मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हों कि हमारे अपने विशुद्धि का उपाय बताएं, हमारे जीवन के उत्थान का उपाय बताएं, जबकि हमारा अपना वो स्वभाव। आगे ने लिखा कि सबके भीतर सोता है एक झरना स्वच्छ उज्जवल जल का, इस इंतजार में कि कोई आए ऊपर की परतें हटाए और एक धार नई बहाए। हम सबके भीतर है ऐसी क्षमता, लेकिन सिर्फ इतना है कि उस क्षमता को प्रकट कैसे करें। उस क्षमता को प्रकट करने के लिए जो उपाय आचार्य भगवंतों ने बताया है वो है तप का। तप शब्द सुनने से और हमारे मन में एक भ्रम पैदा होता है या कि परंपरागत एक भ्रम हमारे मन में बैठा हुआ है और हम आने वाली पीढ़ी को उस भ्रम को ट्रांसफर करते हैं कि तपस्या के मायने है बहुत कठिनाई का जीवन जीना। जबकि मैं सोचता हूं कि तपस्या करने के मायने हैं जिंदगी को बहुत आसानी से बहुत स्मूथली जीना। बड़ा अजीब लगेगा कि तपस्या से क्या लाइफ स्टाइल बहुत स्मूथ हो सकती है? हो ही जाती है। हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति में जितनी मुश्किलें हम अपने जीवन में खड़ी करते हैं यदि हम अपनी इच्छाओं को कम कर देवें तो वे मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और इच्छाओं को जीत लेने का नाम ही तो तप है। बताइए अब हमने अपनी मुश्किलों को आसान करने के लिए अपनी इच्छाओं को अगर जीत लिया है तो जीवन आसान नहीं हो जाएगा? तो तपस्या तो जीवन को आसान बनाने वाली चीजें हैं, मुश्किलें तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति की वजह से खुद खड़ी करते हैं और दोष देते हैं कि मुश्किल तो तपस्या में है। नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल जो हमने पैदा कर रखी है अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए उस मुश्किल को आसान करने वाली प्रक्रिया है तपस्या। बहुत सारी डिजायर्स हैं अपने अंदर, इम्पॉसिबल डिजायर्स जो कभी पूरी नहीं हो सकती। बहुत सारी हैं जो कि लग्जूरियस है, जो कि अनावश्यक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है जीवन में। ऐसी इच्छाएं भी हमारे अंदर बहुत सारी हैं जो कि बहुत मैटेरियलिस्टिक है, ऐसी डिजायर भी है। कितने तरह की इच्छाएं हमारे भीतर हैं, क्या इन सबकी पूर्ति के लिए हमारा जीवन बना हुआ है? ये हमें विचार करना चाहिए। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, जो चीज हमारे जीवन में संभव है उस चीज की पूर्ति होनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन ऊंचे उठे उस चीज की पूर्ति होनी चाहिए। ये इच्छाएं तो जरा वाजिब मालूम पड़ती हैं, लेकिन जिन इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है उन इच्छाओं को अपने जीवन में उत्पन्न करना और फिर बेतहाशा उनकी पूर्ति के लिए पीछे भागना, अपने जीवन में मुश्किल अपने हाथ से खड़ी करना, किसी को क्या दोष दे सकते हैं? अपन ने खुद ऐसा किया। जो जिसको मालूम है कि विश्व में एक ही सबसे बड़ा हीरा है कोहिनूर, और हर आदमी उस कोहिनूर को पाने की इच्छा करे और उसकी पूर्ति के लिए अपना पूरा जीवन खपा दे, तो इसको क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल डिजायर है। व्यर्थ के अपने जीवन में मुसीबत मोल लेना है बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं जो कि हमारी आवश्यकता से अधिक हैं, हमारे लिए तकलीफ पहुंचाने वाली इच्छाएं हैं, लेकिन हम उन इच्छाओं को भी करते हैं और उनकी पूर्ति के लिए अपने जीवन को लगाए रखते हैं उसी में, जबकि हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है। बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो आवश्यक नहीं होती। आप स्वयं विचार कर लें, बहुत सारी इच्छाएं हैं। कैसे? मान लीजिएगा कि हमारे पास हमारे अपने जीवन चलाने के लिए 10, 25, 50 ठो कपड़े चाहिए और हमने रख रखे हैं 1000 और 2000। क्या वो एक साथ एक बार में शरीर पर पहने जा सकते हैं? कोई हमको चक्रवर्ती तो है नहीं कि 96,000 रानियां हो और 96,000 रूप बनाने की सामर्थ हो। एक ही शरीर मिला हुआ, एक पर एक ही कपड़ा पहन सकते, ज्यादा चाहो ठंड के दिन में 2-3 पहन लो, लेकिन रखे तो सैकड़ों हैं और शरीर एक ही है। तो एक शरीर की पूर्ति के लिए कितनी आवश्यकता है इसका निर्धारण हम कर ले। 100 शरीर हो तो 100 की पूर्ति करेंगे, शरीर तो एक ही है। क्या इस तरह हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचान सकते हैं? हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचानते हैं, इसी वजह से हम अपने जीवन में मुश्किल खड़ी करते हैं, लग्जूरियस होते चले जाते हैं। हम बहुत आराम तलबी सीख गए हैं और आराम तलबी ही हमारे जीवन को मुश्किल में डालती। हम सोचते ये हैं कि आराम तलबी से जीवन आसान बनेगा, लेकिन आज तक नहीं बना, सबका अनुभव है। तब हमें क्या विचार करना चाहिए कि हम ऐसी इच्छाओं को छोड़ दें। कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनसे कि सिर्फ इंद्रिय और मन का पोषण होता है, बाकी कोई लाभ नहीं होता। सिर्फ इंद्रिय और मन का पोषण होता है, पेट भले ही ना भरे, लेकिन मन भरने की जो हमारी इच्छा है वो इच्छा हमको बहुत मुश्किल में डालती है। क्या कभी किसी का मन भरा है? जिसके मन में संतोष है उसका मन तो पूरा भरा है, और जिसके मन में निरंतर इच्छाएं उठ रही हैं उसका मन तो कभी नहीं भर सकता। तब क्यों ना हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से हट करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाली भावनाएं और दूसरे के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए किए जाने वाले परोपकार की भावना अपने भीतर डेवलप कर ले। ये तपस्या है। तपस्या को हम इस तरह यदि अपने जीवन में लाएं तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। लगता जरूर है तप नाम सुनते ही साथ हम गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज एक और है कि हमने एक ढंग असल में परंपरागत तपस्या का बना लिया है। बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों तपस्या कर रहे हैं, कोई की उपवास चल रहा है, कोई की एकासना चल रही है, कोई अपने रस परित्याग इत्यादि कर रहा है। बहुत अच्छी चीज, ये भी तप का एक ढंग है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर कभी विचार किया? ये जो उद्देश्य से हम विचलित हो जाते हैं तब ये तपस्या हमारे लिए भी कोई काम नहीं दे पाती और दूसरे को इससे कोई मैसेज नहीं मिलता। इस तपस्या का उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति ने 12 साल तक तपस्या करी और 12 साल तक तपस्या करने के बाद जब उसके गुरुजी ने पूछा कि क्या हासिल किया, कहते हमने विद्या हासिल कर ली, जल पर हम आसानी से चल सकते। कहले 2 कौड़ी की तपस्या हुई तुम्हारी, 2 कौड़ी देते सो 2 कौड़ी में 2 मैंने 2 पैसे देते उस नाव वाले को, सो इधर से उधर कर देता, तुम बेकार में 12 वर्ष तक परेशान होते रहे पानी पर चलने की विद्या हासिल कर। उद्देश्य क्या है? आचार्य भगवंतों ने लिखा कि हमारी तपस्या का उद्देश्य कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः, कर्मों के क्षय के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, अर्थात अपने जीवन में जो विकृतियां अज्ञानतावश संचित हो गई उन विकृतियों और विकारों को हटाने के लिए, अपनी कषायों को मंद करने के लिए, अपनी दृष्टि को निर्मल करने के लिए तपस्या की जाती है। अगर तपस्या का ऐसा उद्देश्य है तब तो वो तपस्या सार्थक है, वरना वो तपस्या ना हमारे जीवन को ऊंचा उठा पाती, ना उससे कोई मैसेज मिलता है। और हम वर्तमान में देखते हैं कि इसी वजह से हमारी युवा पीढ़ी इस तपस्या से विमुख है। कैसे बढ़ाएं, और जब ऐसे कमजोर मौके आ जाएं हमारे जीवन में कि हम क्रोध में खिसक जाएं, गिर जाएं, तो हम कैसे अपने को संभालें। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। मृदोर भावो मार्दवम्, हमारे भीतर जो मृदुता है वही मार्दव धर्म है। जिन क्षणों में हम अपने भीतर कोमलता का अनुभव करते हैं, मृदुता का अनुभव करते हैं, वे क्षण हमारे मार्दव धर्म के हैं। हमारे अंदर अहम करोति इति अहंकारा, ऐसा जब भाव नहीं होता, मैं करता हूं, ये जो भाव है वो ही अहंकार का भाव है। यह कि मैं कुछ हूं, इस तरह का जो भाव है, मैं हूं, ये तो अपनी एग्जिस्टेंस का भाव है, ये तो हर एक को फील होता है कि मैं हूं, लेकिन मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग। ये जो भाव हमारे भीतर हमें घेर लेता है, तब उसको कहते हैं अहंकार। दो तरह से हम जीवन जी सकते हैं, एक तो अपने आप को इस संसार का कर्ता धर्ता और सब कुछ मान करके, ऐसे लोग भी हैं हमारे अंदर जो इस तरह का जीवन जीते हैं कि ऐसा फील करते हैं, हम भी कई कई बार ऐसा फील करते हैं कि जैसे हम ही अपने परिवार को चलाते हैं, हम ही अपने समाज को चला रहे हैं, हम ही अपने देश को चला रहे हैं, यहाँ तक कि ऐसा लगने लगता है जैसे कि सारी पृथ्वी, सारा तीनों लोक का आधिपत्य, स्वामित्व जैसे हमको मिल गया, किसी ने नहीं भी दिया फिर भी हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है। ये जो फीलिंग है वो ही हमारा अपना अहंकार है, और जिसके चलते हमारी मृदुता और कोमलता चली जाती है, हम कठोर हो जाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा कठोर हो गया था, अभी थोड़ी देर पहले, नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा मन में भाव आ गया, अब उसको कमजोरी माना जाए। मेरे भीतर हो या किसी और के भीतर, कमजोरी थी, उस बात को दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता था। मैं बाद में सोचता रहा कि उसको ऐसे ना कह के दूसरे ढंग से कहना था कि आज हम अभी तक जैसी पूजा करते आ रहे थे वैसी ना करके थोड़ी और हटके करते हैं, देखें अगर उसमें मजा आएगा तो वैसी करेंगे, नहीं आएगा तो जैसी कर रहे थे वैसी कर, ऐसा भी कह सकते थे, ये कमी मानी जाएगी, है ना। अब उस चूक को अपन को सुधारना, ये सामने एक उदाहरण है, अपन को रोज ना रोज एक चीज मिल जाती है, अपन सुधार सकते, वहीं के वहीं उसको संभाल सकते हैं, और आगे जब ऐसा अवसर आएगा तो हम नहीं चूकेंगे, ऐसी अपने को ऑटो सजेशन, ऐसी सलाह दे सकते हैं। ऐसे ही कदम कदम पर अगर हम थोड़े से सावधान हो जाएं अपने भावनाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति, तो हम अपने जीवन के साथ साथ अपने पूरे परिवेश को भी संभाल सकते हैं। तो ऐसी जो हमारे भीतर की मृदुता या कोमलता है वो तो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है, और जब हम मैं करता हूं या कि मैं कुछ हूं ऐसे भाव से भर जाते हैं, तो थोड़ी सी कठोरता अपने मन में जो आती है वो हमें भी कष्टकारी होती है और दूसरे को भी कष्टकारी होती है। ये बात यदि हमारे मन में निरंतर बनी रहे तो हमारे भीतर ये जो आज हम मार्दव धर्म के बारे में विचार कर रहे हैं वो विचार करना सार्थक हो। क्या होता है अहंकार के आने से, और क्या होता है हमारे अंदर मृदुता और कोमलता के आने से, दोनों चीजों को अपन थोड़ा सा समझ लें। जब हम किसी दूसरे से सम्मान की आकांक्षा रखते हैं, योग्यता नहीं होने पर भी, तब एक छटपटाहट हमारे भीतर नहीं मिलने पर और मिलने पर भी दोनों स्थितियों में, नहीं मिलने पर तो छटपटाहट होती ही है और अगर मिल जाता है तो मिलने पर भी ऐसा लगता है जैसे कि कम मिला। कभी भी तृप्ति नहीं होती। लिखा तो यह है कि मानेन तृप्ति न तु भोजनेन, व्यक्ति को भोजन से तृप्ति उतनी नहीं मिलती जितनी मान सम्मान से तृप्ति मिलती है। लेकिन आचार्य भगवंत इसके भी आगे कहते हैं कि तृप्ति मान सम्मान से नहीं मिलती, मान सम्मान के साथ मिलने पर जो हमारे भीतर कृतज्ञता और विनय आती है उससे तृप्ति मिलती है। इसलिए जहां लिखा है कि मानेन तृप्ति न तो भोजनेन, वहां उसका अर्थ है कि जब हम दूसरे से सम्मान पाते हैं तो हमारे भीतर क्या आनी चाहिए, विनय और अधिक आनी चाहिए, नम्रता और अधिक आनी चाहिए, झुकने का मन हो जाना चाहिए, तब फिर वो सम्मान भी बुरा नहीं है। सम्मान मिलना बुरा नहीं है, सम्मान की आकांक्षा होना बुरा है। मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊं और अपनी योग्यता से विशिष्टता प्राप्त करूं, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने को चार लोगों के बीच में विशिष्ट मानूं, ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, इतना ही अपने को फर्क समझना है। विशिष्ट होना बुरा नहीं है, विशिष्टता की आकांक्षा या विशिष्ट कहलाने का जो भाव है वो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न करता है। और इतना ही नहीं, कैसे, कसौटी क्या है, कैसे पहचानेंगे कि अब हमारे भीतर अहंकार आ गया है, तो जब भी दूसरे का तिरस्कार करने का भाव, दूसरे के गुणों को सहन न करने का भाव, दूसरे से ईर्ष्या का भाव अपने भीतर दिखने लगे, तो समझना कि ये सारी वैरायटी उसी अहंकार की है, उसी मान कषाय की है। इतना भर अपने को ध्यान में रखें। क्या होता है कि हम जरा सी चीज में और अपना तिरस्कार महसूस करने लगते हैं, या कि जैसे ही दूसरे के गुण बढ़ते देखते हैं तो अपने को हीन समझने लगते हैं, और ये जो हीनता की भावना हमारे भीतर आती है वो हमारे अंदर अहंकार को जन्म देती है। बड़ा साइकोलॉजिकल है। लगता ये है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ईगो डेवलप होता है। जो व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, जो व्यक्ति योग्य है, उसे अपनी योग्यता से अतिरिक्त सम्मान की आकांक्षा ही नहीं है, उसकी योग्यता ही उसका सम्मान है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता नहीं है उसको उपाय करना पड़ता है कि उसे सम्मान मिले, और यही कहलाता है अहंकार, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम देखें, हमने क्या सीखा कि हम अपने भीतर की योग्यता अगर बढ़ाते जाएं, अपने भीतर की योग्यता को बढ़ते हुए देखें और अपने आप में हम स्वयं विशिष्ट होना शुरू हो जाएं, तो बाहर में हमें उस योग्यता के सम्मान पाने की या कि दूसरे के तिरस्कार करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होगी, दूसरे के गुणों को हम आसानी से सहन कर पाएंगे। या तो हम अपने आप को इस संसार का कर्ता मान के, स्वामी मान के जीना चाहते हैं तो वैसा जी सकते हैं, और या कि इस सृष्टि का एक अंग मैं भी हूं ऐसी भावना से भी जी सकते हैं, समुद्र में पड़ी हुई बूंद की तरह और हम उसमें मिक्सअप होके जी सकते हैं, और समुद्र के बीच एक आइसलैंड की तरह अपनी एग्जिस्टेंस कायम रखने के लिए समुद्र में ना मिल करके उससे अलग थलग भी जीना चाहें तो जी सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। हम अपनी योग्यता बढ़ाना पसंद करेंगे और दूसरे के अंदर बढ़ती हुई योग्यता से प्रसन्न होना पसंद करेंगे, या कि हम अपनी योग्यता को बढ़ाए बिना सिर्फ दूसरे से योग कहलाने का भाव रखेंगे और जब भी दूसरे के भीतर गुण देखेंगे तो कसमसाहट अपने भीतर महसूस करेंगे, अब ये हमारा चुनाव है कि हमें दो में से क्या चुन सकते। आनंद तो पहले वाले में ही है कि हम निरंतर अपनी योग्यता बढ़ाते चले जाएं और सम्मान पाते चले जाएं। योग्यता ही सबसे बड़ा सम्मान है, और जैसे ही दूसरे के अंदर भी उस योग्यता को देखें, उन गुणों को देखें, तो हर्षित हो जाए। अभी हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि कोई हमारा सम्मान करे ना करे, हमें इसकी ज्यादा चिंता नहीं, हमें चिंता ये हो जाती कि हमारे सामने दूसरे का सम्मान ना हो जाए। ये बड़ी मुश्किल अपने भीतर देखना, हमने कई बार देखा इस चीज को, अपन सब भी देखते हैं, अपन विचार कर रहे हैं कि बैठे हैं सब, और किसी एक व्यक्ति को अगर प्रायोरिटी मिल जाए, उसको सम्मान मिल जाए, तो कैसा लगता है? क्या हम उस समय उसके सम्मान में प्रसन्नता महसूस कर पाते हैं? उसके सम्मान में हम गदगद हो जाते हैं? नहीं हो पाते हैं। हमें उस समय लगने लगता है कि इस सब की क्या जरूरत थी, ऐसा लगने लगता। और अगर उस जगह अपने को खड़ा करें तो जरूरत थी, इतना ही है। अगर उसकी जगह पर हम हों तो तुम सम्मान मिलना चाहिए, जरूरत है। लेकिन कोई और दूसरा, दूसरे का हो रहा सम्मान, लेकिन हमें लगता है हो रहा है जैसे हमारा अपमान। बताओ, दूसरे के सम्मान में ये जो अपमान महसूस करने का भाव है, उसी का नाम तो अहंकार है। और दूसरे के सम्मान में, गुणों के सम्मान में अगर हम आह्लाद महसूस करते हैं, तो मानिएगा कि अब हमारे भीतर विनय, कोमलता, मृदुता, ये जो हमारा अपना स्वाभाविक धर्म है, वो आना शुरू हो गया। ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, इसको अपन ठीक करने की कोशिश करें कि जब जब भी किसी के गुण देखें तो हमारे भीतर हर्ष होना शुरू हो। कभी किसी के गुणों की प्रशंसा हम सुने तो हमें हर्ष महसूस हो, इसके बाद ही हम अपने गुण और दूसरे के गुण बढ़ा पाएंगे। अपने गुण तभी बढ़ेंगे जब हम दूसरे के गुणों को सहन कर सकेंगे, उसके गुणों की प्रशंसा में शामिल हो सकेंगे। हमारे अंदर इतनी कोमलता या मृदुता आनी चाहिए। हम लोगों ने अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना जटिल और इतना कठोर बना दिया है कि हमें ये चीज महसूस ही नहीं होती। और इतने ही नहीं, हम अपने इस अहम को ऊंचा उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों पर भी डिपेंड हो गए। मेरेपन का जो भाव है वो भी इस मैं की वजह से ही आता है। आई एम समथिंग, आई एम, इतना कहने में कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ये तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ हूं ये जो भाव है वो कैसे डेवलप होता है? अब जब मैं कुछ हूं तो मेरे पास बहुत कुछ होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे करके पूरा संसार का प्रपंच, जहां हमने ये मान लिया कि मैं कुछ हूं, वहां पर सारा प्रपंच फैलना शुरू। अगर सपोज करे मैं अपने को मान लूं कि मैं एक साहब हूं, ठीक है, अब साहब हूं तो साहब के जितने तौर तरीके होना चाहिए वो सब मुझ में होना चाहिए। एक साहब को कैसे रहना चाहिए, अपने नौकर को हिरासत की नजर से देखना चाहिए, ये साहब का लक्षण है, नहीं ऐसा गलत तो नहीं है? और ऐसा आ जाता है भाव, मैं साहब हूं तो मेरे हिसाब से मेरे मातहत जो लोग हैं उनको चलना चाहिए। कितनी मुश्किलें अपने जीवन में आ जाती, मैं साहब हूं तो मेरे घर में अब जो है इतनी इतनी चीजें तो होनी चाहिए, नहीं तो लोग आएंगे तो वो कहेंगे अरे हम साहब क्या गए थे, उनके यहाँ तो गीजर ही नहीं, उनके यहाँ पर तो हीटर ही नहीं, कूलर ही नहीं, उनके यहाँ पर टेलीविजन, उनके यहाँ कलर्ड नहीं है, उनके ब्लैक एंड व्हाइट है। अब ये मेरा मैं जो है इन चीजों से बड़ा हो जाता है, और हम सब इसी कोशिश में लगे हैं। अगर हम चीजों में अपनी योग्यता मानते हैं तो मानिए अभी हमारे अंदर मृदुता और कोमलता धर्म नहीं आया है, हमारे अंदर अभी अहंकार है। मेरे मैं को संभालने के लिए मैं अपने इन चीजों पर डिपेंड होता हूं और इन चीजों से अपने अहंकार का पोषण करता हूं, तो मानिएगा कि अभी हमारे अंदर प्रभुता नहीं है। चीजें होना बुरी चीज नहीं है, चीजों का उपयोग करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन चीजों के माध्यम से अपने आप को बड़ा मानना, बड़प्पन अपना मानना, ये अपनी एक कमजोरी है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अपन करते हैं। जब नई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो गाड़ी का सुख तब मिलता है जब चार लोग देखें, ये तो नहीं मिलता। गाड़ी चलाने का आनंद तो आना चाहिए, वो नहीं आता। नहीं, गाड़ी कोई देख लेवे तब आनंद आता है, और कोई पूछ लेवे तब तो क्या कहना कि ये मॉडल कब लिया आपने, लेटेस्ट लगा एकदम, तब ऐसा लगता है कि बस जैसे सार्थक हो गया लेना। नहीं तो उसके, जबकि आपने काम के लिए ली थी, इधर तो उधर चले जाएंगे आसानी से पहुंच जाएंगे, इसके लिए बनी थी वो, इसके लिए थोड़ी बनी थी कि चार लोगों के बीच जाकर के और उसको दिखाएं कि मेरे पास ये है। मजा ये है, मान का मजा ये है कि उससे जो चीज प्राप्त होती उसमें सुख नहीं मिलता, उसे सुख तो उसके प्रदर्शन में मिलता है कि देखो मेरे पास है, उत्तमा का है ही तक नहीं। अब सारा सारा मजा उसमें, ये चीज अपने भीतर झांक करके देखनी पड़ेगी। जब भी अपन कोई चीज हासिल करें अपने जीवन में, तब उस चीज का आनंद लें, इसमें आनंद ना माने कि वो चीज दूसरे लोग देखें। मेरे गुण जब तक दूसरे के द्वारा सम्मानित ना होंगे तब तक मानो कि मेरे गुण है ही नहीं, मेरे गुण दूसरे के सम्मान पाने के मोहताज हो गए, तब तो फिर मेरे अंदर गुणवत्ता बढ़ ही नहीं पाई, और ना ही मैं दूसरे के भीतर के गुण देख करके उनसे कोई प्रेरणा ले पाऊंगा, उनसे कोई अपने जीवन में अच्छा मार्ग उनके द्वारा ले पाऊंगा। ये दोनों चीजें हमारे भीतर बहुत तेजी से इन दिनों बढ़ गई। वैसे भी आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि लोभ कषाय के